और जिलादी उसके बड़ा जबरदस्त सुरमा और तिस्बी का बेटा था और जिलाद से उसके पैदा हुआ था और जिलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्तिस को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी क्योंकि तू वैर औरत का बेटा है। तब इफ्तिस अपने भाइयों के पास से भागकर तूत के मुल्क में रहने लगा और इफ्तिस के पास सोते जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। और कुछ अच्छा के बाद बनी अमून ने बनी इसराइल से जंग छेड़ दी और जब बनी अमून बनी इसराइल से लड़ने लगे तो जिलादी बुजुर्ग चले कि उसे को तोड़ के मुल्क से ले आए। तो वो उसे से कहने लगे कि तू चलकर हमारा सरदार हो ताकि हम बनी अमून से लड़े। और इसे ने जिलादी बुजुर्गों से कहा, क्या तुमने मुझसे अदावत करके मुझे मेरे बाप के घर से निकाल नहीं दिया? तो अब जो तुम मुसीबत में पड़ गए हो तो मेरे पास क्यों आए? जलादी बुजुर्गों ने इफ्ता से कहा कि अब हमने फिर इसलिए तेरी तरफ रुख किया है कि तू हमारे साथ चलकर बनी अमून से जंग करे और तू ही जलाद के सब बसिंदों पर हमारा हाकिम होगा। और इफ्ते ने जलादी बुजुर्गों से कहा, अगर तुम मुझे बनी अमून से लड़ने को मेरे घर ले चलो और खुदामन उनको मेरे हवाला कर दे तो क्या मैं तुम्हारा हाकिम होगा? जिलादी बुजुर्गों ने इफ्ते को जवाब दिया कि खुदामन हमारे दरमियान गवाह हो, यकीनन जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। तब इफ्ते जिलादी बुजुर्गों के साथ रवाना हुआ और लोगों ने उसे अपना हाकिम और सरदार बनाया और इफ्ते ने मिस्पा में खुदामन के आगे अपनी सब बातें कह सुनाई और इफ्ते ने बनी अमून के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम जो तू मेरे मुल्क में लड़ने को मेरी तरफ आया है। बनी अमून के बादशाह ने इफ्ते की एलचियों को जवाब दिया इसलिए कि जब इसराइली मिस्र से निकल कर आए तो अर्नून से यबूक और यर्दन तक जो मेरा मुल्क था उसे उन्होंने छीन लिया, तो अब तू उन इलाकों को सुलह और सलामती से मुझे फेर दे। तब इफ्ते ने फिर एलचियों को बनी अमून के बादशाह के पास रवाना किया और ये कहला भेजा कि इफ्ता यूँ कहता है कि इसराइलियों ने ना तो मुआब का मुल्क और ना बनी अमून का मुल्क छीना, बल्कि इसराइली जब मिस्र से निकले और बयाबान छानते हुए बहरे कुलजम तक आए और कादिस में पहुंचे तो इसराइलियों ने अदूम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि हमको जरा अपने मुल्क से होकर गुजर जाने दे, लेकिन अदूम का बादशाह ना माना। इसी तरह उन्होंने मुआब के बादशाह को कहला भेजा और वो भी राजी ना हुआ, चुनांचे इसराइली कादिस में रहे। तब वो बयाबान में होकर चले और अदूम के मुल्क और मुआब के मुल्क के बाहर बाहर चक्कर काट कर मुआब के मुल्क के मस्जिद की तरफ आए और अर्नोन के उस पार डेरे डाले पर मुआब की सरहदें दाखिल न हुए इसलिए कि मुआब की सरहद अर्नोन था। फिर इसराइलियों ने अमोरियों के बादशाह सेहून के पास जो हिस्बोन का बादशाह था एलची रवाना किए और इसराइलियों ने उसे कहला भेजा कि हमको जरा इजाजत दे दे कि तेरे मुल्क में से होकर अपनी जगह को चले जाएं। पर सेहून ने इसराइलियों का इतना एतबार ना किया कि उनको अपनी सरहद से गुजरने दे, बल्कि सेहून अपने सब लोगों को जमा करके जहस में खैमा जम हुआ और इसराइलियों से लड़ा और खुदावन इसराइल के खुदा ने सेहून और उसके सारे लश्कर को इसराइलियों के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। तो इसराइलियों ने अमोरियों के जो वहाँ के बसिंदे थे सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया और वो अर्नोन से यबूक तक और बयाबान से यर्दन तक अमोरियों की सब सरहदों पर काबिज हो गए। बस खुदावन इसराइल के खुदा ने अमोरियों को उनके मुल्क से अपनी कौम इसराइल के सामने से खारिज किया। तो क्या तू अब उस पर कब्जा करने पाएगा? क्या जो कुछ तेरा देवता कमूस तुझे कब्जा करने को दे, तू उस पर कब्जा ना करेगा? बस जिस चीज को खुदावन हमारे खुदा ने हमारे सामने से खारिज कर दिया है, हम भी उनके मुल्क पर कब्जा करेंगे। और क्या तू सफूर के बेटे बल्क से, जो मुआब का बादशाह था, कुछ बेहतर है? क्या उसने इसराइलियों से कभी झगड़ा किया या कभी उनसे लड़ा? जब इसराइली हिस्बोन और उसके कस्बों और एरोएस और उसके कस्बों और उन सब शहरों में जो अर्नोन के किनारे किनारे हैं 300 बरस से बसे हैं, तो इस अरसा में तुमने उनको क्यों न छेड़ लिया? गरज मैंने तेरी फतह नहीं की, बल्कि तेरा मुझसे लड़ना तेरी तरफ से मुझ पर जुल्म है। बस खुदावंद की जो मुझसे है बनी इसराइल और बनी अमून के दरमियान आज इंसाफ करे। लेकिन बनी अमून के बादशाह ने इफ्तेह की ये बातें जो उसने उसे कहला भेजी थी ना मानी। तब खुदावंद की रूह इफ्तेह पर नाजिल हुई और वो जिलात और मुनस्सा से गुजरकर जिलात के मिस्फा में आया और जिलात के मिस्फा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्तेह ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए, वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सोखनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। तब इफ्तेह बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया। और उसने रुएस से ननियत तक, जो 20 शहर हैं, और अबील करामईम तक बड़े खूनरेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए और इससे मिस्फा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई और वही एक उसकी औलाद थी। उसके सिवा उसकी कोई बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, तो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कमारपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा, जा, और उसने उसे 2 महीने की रुख्सत दी और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कमारपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मांगी थी। इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था, तो बनी इसराइल में ये दस्तूर चला कि साल दर साल इसराइली औरतें जाकर वर्ष में 4 दिन तक इफ्तेह पिलादी की बेटी की याद जारी करती थीं।